मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे जड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा
है। बहुत सुंदर गीत और उसके साथ बहुत सुंदर संदेश। क्या लिया हमने संदेश? कि हमारी मुश्किलों से कई गुना जो खुदा हमारे पिता हैं वो बड़े हैं। और यही बात को कई वर्षों से अपने जीवन में धारण करते अनेकों को प्रेरणा देने वाले हमारे आदरणीय ब्रजमोहन भाई साहब भी हमारे बीच पहुंचे हैं। हम भाई साहब का भी बहुत प्रेम से स्वागत करेंगे। पिछले 55 वर्षों से ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ आप जुड़े हुए हैं और ब्रह्मा कुमारीज के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। वर्तमान समय आप बाय प्रोफेशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में कई वर्षों तक फाइनेंस मैनेजर की कैपेसिटी में सर्विस करने के पश्चात आपने डेडिकेटेड रूप से अपनी सेवाएं इस विद्यालय में दी और पिछले 45 वर्षों से आप सेवाओं डेडिकेटेड रूप से सेवाएं दे रहे हैं। आपके अंदर जो विजडम है वो बहुत नेचुरल है और हम देखेंगे कि बहुत कॉम्प्लेक्स बातों को बहुत सहज करके आदरणीय भाई साहब हम सबके बीच उस बात को रखते हैं। और जो इस विद्यालय का मंथली मैगजीन है प्यूरिटी, जिसकी कॉपीज कुछ लोगों ने सब्सक्राइब भी करी है, आप उसके चीफ एडिटर भी हैं। तो आप न केवल एक बहुत अच्छे वक्ता हैं लेकिन साथ साथ एक बहुत अच्छे लेखक भी हैं। तो आज हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हमारे बीच ये सारे ही ईश्वरीय विश्वविद्यालय रिट्रीट सेंटर के वरिष्ठ भाई बहने बैठे हैं। मैं सबसे पहले आदरणीय आशा दीदी से निवेदन करती हूं कि आप अपने वक्तव्य के द्वारा हम सबका स्वागत भी करेंगे और हम सबको इस 3 दिन के अनकॉन्फ्रेंस या रिट्रीट के प्रति अपने इंस्पिरेशंस रखेंगे।
ओम शांति। प्यारे परम पिता परमात्मा के प्यारे घर में आए हुए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत दिल से हार्दिक स्वागत ओम शांति रिट्रीट सेंटर की ओर से कर रही हूं। मेजॉरिटी मुझे बताया गया कि पहली बार आए हैं। आप में से कितने जो पहली बार आए हैं? मेजॉरिटी। आपको यहां आने से कुछ न्यारापन लग रहा है? अलग अलग लग रहा है ना? जो सामान्य रूप से हम लोग अनुभव इस 4 दीवारी के बाहर करते हैं वैसा अनुभव नहीं है, कुछ न्यारा सा है, सिंपल भी है और रूहानी भी है, स्पिरिचुअल भी है। एक वातावरण सुंदर सा जो कि मन की विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं से भरा हुआ वातावरण है और आराम से हम इसके साथ हार्मोनाइज हो जाते हैं। ऐसे स्थान पर आप सब बहुत ही वर्तमान समय की आधुनिक युग की बढ़ती हुई डिमांड को समझने के लिए और जीवन में अपनाने के लिए समय निकाल करके आए, उसके लिए आप सब मुबारक के पात्र हैं। क्योंकि आजकल लोगों के पास अपने लिए समय नहीं है, और आप वो फॉर्चुनेट और लकी वंस हैं जिन्होंने अपने लिए समय निकाला है। अपने लिए आप ताली बजा सकते हैं, क्योंकि जब कभी अच्छी बात किसी को कही जाती है तो अगर मिडिल एज में होते हैं तो कहते बहन जी हम रिटायर हो जाएंगे ना तो बस यहीं पर आ जाएंगे, और बुजुर्ग होते हैं तो कहते अब हमें और करना ही क्या है, यही करना है। बच्चे होते हैं तो कहते हैं अभी तो करियर अपना बनाना है। लेकिन सेंसिबल लोग मैं उनको मानती हूं जो अपनी वर्किंग लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में अपने लिए समय निकालकर अपने आप को और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। बिकॉज दैट्स अ टाइम व्हेन यू रियली रिक्वायर दीज थिंग्स। वंस वी आर आउट ऑफ द सीन देन वी डोंट रिक्वायर, देयर आर नॉट मेनी चैलेंजेस, वी हैव फेस्ड देम ऑलरेडी। सो व्हाइल वी आर living in a life where we have to face challenges day in and day out, it is then we require extra strength to face them. Aur wo samay aap sab ne nikala, uske liye aap sabko bahut bahut pyar se punah main kehti hu, aap sensible kaam kiya uske liye shabash shabash shabash। मैं सोच रही थी रंजना बेन को, मैंने कहा रंजना बेन ये आईटी क्या होता है, ये अपने वश की तो बात नहीं है, क्योंकि हम लोग इस फील्ड में एक्टिवली नहीं है, थोड़ी बहुत नॉलेज है। लेकिन ये उतना ही सच है जब हम लोग मोबाइल्स हैंडल करते हैं तो कभी कभी हमारे फोन्स हैंग हो जाते हैं, कंप्यूटर्स हैंग हो जाते हैं। क्यों हैंग हो जाते हैं? जब बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लोड होता होगा, मेमोरी जो है वो बहुत ज्यादा फुल हो गई होगी, तब जाके हैंग हो गया। तो ऐसे ही मैं सोच रही थी जब यहां गीत चल रहा था, डांस चल रहा था, तो मन ही मन में सोच रही थी कितने अच्छे ख्यालातों से, कितने अच्छे विचारों से हम हर चीज की शुरुआत करते हैं। तो ये इनॉग्रल बहुत स्पेशल सेरेमनी मानी जाती है जिसमें सब लोग गुड विशेस देते हैं, और गीत कितना अच्छा था कि मुश्किलों को कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। ऐसे ही हमारी लाइफ जब शुरू होती है तो उसमें हम उमंग, उत्साह, जील, एंथ्यूजियाज्म सब कुछ हमारे में होता है, और कुछ भी हमें इम्पॉसिबल नजर नहीं आता। चैलेंजेस आते हैं, उन्हें फेस करते हैं, कुछ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, उनके बोझ से हैंग क्यों होता कंप्यूटर, मेमोरी फुल। इसी रीति से जब बहुत ज्यादा कोई ट्रॉमेटिक, इमोशनली ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं तो हम भी क्या करते हैं, मेमोरी बार 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 उन चीजों को याद करके अपने माइंड को क्या कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, हैवी कर लेते हैं। फिर थोड़ा सा और करेंगे तो आखिर वो हैंग हो जाता है, अब मेरे से नहीं होता, अब मैं नहीं कर सकता। इसके लिए साधन और माध्यम क्या है? फिजिकल बॉडी में अगर कोई चीज होती है तो डॉक्टर उसको ठीक कर सकता है, दवाई दे सकता है। लेकिन जहां मन में ऐसा कुछ हो तो उसके लिए साधन क्या है? उसके लिए साधन है रिटर्न टू योर रूट्स। जो आप ओरिजिनल है, जो आप सही मायने में है, वो आज सवेरे के लेसन में आपने सुना होगा कि हम कितने अच्छे शुद्ध हैं, पवित्र हैं, गुणवान हैं, शक्तिशाली हैं, कितनी हमारी विशेषताएं हैं, आत्मा के रूप से हम कितने शक्तिशाली हैं। लेकिन धीरे धीरे सब चीजें अपनी मेमोरी में ऐड करते करते अपने आप को हैवी कर लेते, स्ट्रेस में ले आते, टेंशन में ले आते, डिप्रेशन में ले आते। और छूटने का साधन यही है कि हम अपने पुनः उस चीज को याद करें। मैं कहीं पढ़ रही थी कि जैसे सूर्य होता है, सूर्य क्या करता है, उगता रहता है, सूर्य उगता है और अंधकार का नाश होता है, ठीक है ना। सूर्य ढूंढने नहीं जाता कहां अंधकार है वहां मैं जाकर के नाश करूं, लेकिन वो अपना कर्म करता है, शाइन करता रहता है, उगता है, शाइन करता है, अंधकार का नाश करता है। इसी रीति से जब हम अपने ओरिजिनल सेल्फ में आते हैं और बारंबार अपने आप को उस बात की स्मृति दिलाते हैं, तो वो जो चीजें जिन्होंने मेरे माइंड को हैंग कर दिया, जिन्होंने मेरी कैपेसिटीज को, स्पेशलिटीज को हैंग कर दिया, उन सब चीजों को बार बार अपनी पुनः ओरिजिनल स्मृति से हम साफ कर लेते हैं और फिर रिफ्रेश होकर के अपने कार्य में हम आ जाते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको आपको अलग से अभ्यास करना है, नहीं। जब मैं पढ़ती थी उस समय एक स्लोगन पढ़ा था मैंने, रोड साइड पर लिखा था, स्पिरिचुअलिटी इज नॉट लाइक अ केक टू बी टेकन ओकेजनली, इट इज लाइक ब्रेड टू बी टेकन डेली। और बहुत अच्छा इसका प्रभाव पड़ा। हम लोग सोचते हैं शायद हमारी प्रोफेशनल लाइफ से स्पिरिचुअलिटी अलग चीज है, नहीं। वी आर बेसिकली स्पिरिचुअल बीइंग्स एंड दैट थिंग हैज टू बी जस्ट शोन इन माय प्रोफेशन। हम सब ने ग्लोबल वार्मिंग सुनी, राइट? आजकल एक और चीज है, ग्लोबल इमोशनल वार्मिंग है। क्लैशेस होते रहते हैं ना इमोशंस, एक दूसरे के इमोशन या तो सहन करते हैं या फिर अपने प्रत्यक्ष करते हैं। तो ग्लोबल इमोशनल वार्मिंग एवरीवेयर, जिसको काम डाउन करने के लिए, ठीक करने के लिए जो मेथड है, जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, एंशंट है एंड मोस्ट मॉडर्न है, वो है राजयोग मेडिटेशन। और इसका अभ्यास 100% हमारी पर्सनल, प्रोफेशनल, फैमिली और सोशल लाइफ हर एक को बहुत अच्छा बना देता है। इन शब्दों के साथ आप सब ने बहुत सुंदर जो अपॉर्चुनिटी अवेल की है उसका पुनः स्वागत करते मैं यहां अपनी वाणी को विराम देती हूं। आपका पुनः स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आशा दीदी।
ज्योति जगाओ, ज्योति जगाओ, विश्व शांति की ज्योति जगाओ।
मैं यशवंत भाई से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इतने समय से आईटी की सेवाएं इसी ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो भी आईटी से रिलेटेड सेवाएं हैं उसको कोऑर्डिनेट करते रहे हैं, तो आप संक्षिप्त में कुछ अपने इंस्पिरेशंस भी देंगे और बहुत ब्रीफ में हमें थोड़ा सा बताएंगे कि क्या क्या सर्विसेज इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चल रही है आईटी प्रोफेशनल्स के साथ।
परमपिता शिव परमात्मा, आदरणीय ब्रजमोहन भाई जी, आशा दीदी जी, तृप्ति बहन, संजीव भाई, रंजना बहन और आप सब आईटी प्रोफेशनल लोग यहाँ जो आए हुए हैं, आप सबका दिल से मैं ग्रीटिंग देता हूँ। और आज मुझे थोड़ी आपसे ज्यादा खुशी हो रही है कि हमने जो 10 साल पहले बीज डाला था आईटी का, तो आज इतना अच्छा वृक्ष बढ़ता जा रहा है, तो इसके लिए आप सबको बधाई हो। अभी हमारी आईटी की जो सेवाएं चल रही है, ब्रह्म कुमारी के लिए भी बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं और आप सब जानते हैं कि आईटी एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। दुनिया की कोई भी समस्याएं हैं, कोई भी प्रॉब्लम है या कोई डिमांड है क्या प्रोजेक्ट से, उसके लिए आईटी एक सॉल्यूशन बन जाता है और कंपनी और प्रोजेक्ट्स चलते हैं। तो इसलिए हम लोगों के मेंबर्स भी हम लोगों ने बनाए हैं आईटी के, जो है 3600 मेंबर हैं और वो अपनी सेवाएं अपने संस्था को, ब्रह्म कुमारीज को, अपने अपने स्किल के अनुसार वॉलंटियरली सेवाएं देते हैं। जैसे वेबसाइट डिजाइनिंग है, सोशल मीडिया है और हमारे जो हेडक्वार्टर है माउंट आबू, जहां से मैं आया हूं 25 ईयर्स वहां हम लोग सेवा कर रहे हैं और हमारे साथ टीम भी है। तो हम लोग जो वेबसाइट डिजाइनिंग और जितने भी नेटवर्किंग है, ग्लोबल नेटवर्किंग है, हमारे साथ ग्लोबल आईटी भी जुड़ा हुआ है जो लंदन में उसका हेडक्वार्टर है और उनके साथ साथ हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं और ये सेवाओं को आप तक पहुंचाने में हम लोग हेल्प करते हैं। और आशा करता हूं कि आप भी सभी इस सेवाओं में अच्छी तरह से विश्व के अच्छे कार्य के लिए इस सेवाओं को यूज करें, क्योंकि आईटी को मिसयूज नहीं होना चाहिए, ये आप सब ध्यान रखें, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी है एक ब्रेक है आईटी के लिए। तो स्पिरिचुअल नहीं होंगे तो विदाउट ब्रेक आप गाड़ी चला रहे ऐसे होगा। तो ये आईटी को आप अच्छी तरह से यूज करो और अच्छे ईश्वरीय कार्य के लिए और मानवता के कार्य के लिए इसको यूज करो। और मुझे यहाँ आदरणीय आशा दीदी जी और भाई साहब ने जो चांस दिया ORC आने का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका भी धन्यवाद। और आशा दीदी की एक बहुत बड़ी इच्छा है कि अभी जैसे आप 400 लोग आए हुए, तो हम 2000 लोगों का कब करें, तो आप सब तैयार हैं ना 2000 लोगों की कॉन्फ्रेंस करने के लिए? तो हम वो एक सपना देख रहे हैं और एक हकीकत भी देखेंगे कि आने वाले दिनों में हम 2000 की एक कॉन्फ्रेंस आईटी की करेंगे, क्योंकि आईटी अभी इतना फैल गया है कि हर कंपनी में आईटी इंडस्ट्री हो या नॉन आईटी इंडस्ट्री हो या फैक्ट्रियां हो, उसमें आईटी का एक सेक्शन 20% जॉब हो जाता है। इसलिए आईटी के फील्ड बहुत बड़ा है और हम आशा दीदी के संकल्प को पूरा करेंगे और 2000 का एक हम बहुत बड़ी अनकॉन्फ्रेंस और कॉन्फ्रेंस हम यहां करेंगे बड़े ऑडिटोरियम में। ये आशा करते हुए आप सबको बहुत बहुत बधाई हो और माउंट आबू आने का भी आप सबको निमंत्रण है, जहां हम लोग रहते हैं तो आप सभी वहां पे भी आना। थैंक यू, ओम शांति।
और अब हमारे बीच आदरणीय ब्रजमोहन भाई साहब हैं। मैं भाई साहब से निवेदन करूंगी कि आप भी कुछ इंस्पिरेशंस इस कार्यक्रम के लिए हम सबके समक्ष रखें। आदरणीय भाई साहब,
ओम शांति। परमपिता परमात्मा की प्यारी संतान, मेरे साथ मंच पर बैठे हुए ये है आईटी। अच्छा। मेरे साथ मंच पर बैठे हुए आईटी के हमारे डिपार्टमेंट के संजीव गुप्ता भाई, और जिन्होंने अभी बोला जसवंत भाई, और इधर बहन जी हैं त्रिपति बहन जी, आशा बहन जी, रंजना बहन जी और प्यारी आत्माओं, ये जो टॉपिक आपका लिखा गया है ये आईटी के बारे में नहीं है, लेकिन आईटी वालों की अपनी स्थिति के बारे में है। आप जानते हैं एक छोटी सी कहानी पहले सुनाई जाती थी कि एक आईटी एक्सपर्ट थे, उन्होंने गंगा पार करनी थी तो एक बोटमैन था, उसकी बोट में बैठ गए और रास्ते में उससे पूछा कि तुम आईटी के बारे में क्या जानते हो। उसने कहा कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं, मैं तो कुछ नहीं जानता। तो बोले तूने जिंदगी में आके क्या किया, आधी जिंदगी तो तूने अपने ऐसे ही गवा दी। अब बोट नदी के मिडल में चली गई और थोड़ा सा हिलने लगी, फ्लड था, तो बोटमैन ने पूछा साहब आप तैरना जानते हैं? कहता मैं नहीं जानता। तो बोले आपने तो अब सारी जिंदगी गवा दी। इसलिए ये जो टॉपिक रखा गया है ये है कि आईटी वालों को अपने लिए क्या करना है। किसी को बहुत खतरनाक हथियार दे दो तो उसको उसका प्रॉपर यूज करना आना चाहिए। और आप जानते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इंफॉर्मेशन के लिए कहा जाता है कितनी इंफॉर्मेशन। सबसे बड़ी बात तो ये चूज करने की है कि हमें कितनी इंफॉर्मेशन अपने अंदर जरूरी है ग्रहण करने की। जैसे कोई व्यक्ति ओवर ईटिंग कर ले या गलत चीजें खा ले तो क्या होता है? तो तीन शब्द सब जानते हैं, एक होता है इंफॉर्मेशन, एक होता है नॉलेज और एक होता है विजडम। तो इंफॉर्मेशन का तो एक्सप्लोजन हो गया है और विजडम गायब हो गई है। अब दूसरा पार्ट ऑफ क्वेश्चन यह है कि सबसे महंगी चीज कौन सी है आज दुनिया में? एक तरफ सस्ती है तो सबसे महंगी भी होनी चाहिए। तो आपका दिमाग ज्यादा नहीं थकाते क्योंकि आईटी बना ही इसलिए कि दिमाग का यूज ही बंद कर दो। अच्छा, तो वो है इंसानियत। इंसान सस्ता, इंसानियत रेयरली फाउंड। अच्छा, तो अगर हमने इंसान को दोबारा से वैल्यूएबल बनाना हो तो क्या करना चाहिए? उसके अंदर इंसानियत वापस डाल दी जाए। तो इसको कहते हैं विजडम कि हमें दुनिया में बहुत कुछ अवेलेबल है। कोई कहे कि सारे वर्ल्ड में कितनी तरह के स्नेक्स हैं, हो सकता है इसका भी कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए। क्या हमें उस इंफॉर्मेशन की जरूरत है? तो इसलिए ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन है। इसलिए कहा जाता है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट वी शुड लर्न एंड व्हाट वी शुड अनलर्न एंड व्हाट वी शुड रीलर्न। तो इसलिए ये जो टॉपिक आपके लिए रखा गया है, पहले वक्त में जब हम लोग परफेक्ट बीइंग थे, क्योंकि आज जो हमारी सिचुएशन है वो बड़ी एक कहा जाए तो बड़ी ही है हेल्पलेस तरह की है। देर इज नॉट ए सिंगल पर्सन जो ये कह सके कि मैं वरी लेस हूं, मेरे को कोई चिंता नहीं है, चिंता मुक्त हूं। अच्छा, आपकी जितनी भी बड़ी आईटी है, खुदा करे और भी बड़े है ना, लेकिन उससे क्या हम चिंता मुक्त होंगे? उसका कोई सोल्यूशन हमारे पास है? तो कहा जाता है कि किंग था, वो किंग सारा दिन शिकार वगैरह करके थक थका के पैलेस में आया और उसने कहा जी कि मैं बिल्कुल थका हुआ हूं, सीधा ही सोना चाहता हूं। तो उसके वजीर ने कहा हजूर आपका शयन कक्ष है, पैलेस में जाइए सो जाइए। कहता खाना भी नहीं खाऊंगा, आप में तो ऐसा कोई नहीं है जो कहे रात को हम भोजन नहीं करेंगे। अच्छा, अब जब वो जाने लगा तो उसको उसने कान में कहा हजूर दो घंटे पहले एक बहुत काला सांप था, वो आपके स्लीपिंग रूम में चला गया था, हमने बहुत कोशिश की वो मिला नहीं, पर आप तो बादशाह हैं, आपको क्या कह सकता वो, आप जाइए और सो जाइए। अब हमारी क्या हालत है कि हम वरी लेस किंग हैं, या हर एक व्यक्ति को वो वरी से मुक्त हो ही नहीं सकता। कईयों को तो ये वरी लगी रहती है कि वरी बढ़े क्यों ना, कैसे ना बढ़े। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम अपने लिए इंफॉर्मेशन को मिनिमाइज करें, ताकि जो असेंशियल इंफॉर्मेशन है वो हम अंदर ले जाएं। और उसके लिए हमें क्या चाहिए कि पहले तो एक आईटी होता है, एक ईटी भी होता है ना। तो हम लोग जो हैं वास्तव में इस लोक के वासी नहीं है। आपके ख्याल में हम इस लोक के वासी हैं, या जिस बॉडी में आप हैं क्या वो परमानेंटली वो वही आप हैं या कुछ अलग है? यहां पर ये पहली बात बताई जाती है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है कि अगर आप ट्रुथ पर चलेंगे तो कभी आप धोखा नहीं खाएंगे। और जो ही आपने ट्रुथ से जरा सा भी डेविएट किया या ट्रुथ के साथ कॉम्प्रोमाइज किया, तो जरूर आपको पहले पता नहीं लगेगा लेकिन धोखा मिलेगा। आज हम वरी में हैं, फियर में हैं, फ्यूचर अनसर्टेन है हमारा, तो कोई सर्टेनिटी तो है नहीं, तो धोखे में है। इसलिए पहली बात सत्य की है, व्हाट इज ट्रूथ, क्योंकि उसके आधार पर आप इंफॉर्मेशन अपने अंदर ले जाएंगे। ट्रूथ इज समथिंग दैट वॉज, दैट इज एंड दैट विल बी। जो सदा रहे उसको ट्रूथ कहते हैं, अनचेंजेबल होता है, एटर्नल होता है। अच्छा, अब आप सामने आ जाइए कि ये आपका कितना एज है? फर्स्ट रो, हाँ, 34। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 35 years before today, did you have this body? आप भी अपनी अपनी एज में एक साल जोड़ लीजिए और क्वेश्चन कीजिए अपने से, आपके पास ये जो आज जिसका आई कार्ड बना हुआ है ये बॉडी थी या नहीं थी? What is the answer? Yes or no? No. फिर अपने से क्वेश्चन कीजिए, ये बॉडी रहेगी? किसी की रही है? What is the answer? Yes or no? जो चीज नहीं थी और नहीं रहेगी, by the definition of truth, क्या आप उसको truth कह सकते हैं? Absolute truth? ये तो नहीं हम कहते हैं, imagination है। At best it is relative truth, ठीक है। अब बताइए कि जब व्यक्ति की पहली आई के बारे में ही consciousness में defect आ जाए, तो फिर वो लाइफ में क्या करेगा, किस तरह की वैल्यूज अडॉप्ट करेगा, किस तरह से सिलेक्शन करेगा? होगा ही नहीं। इसलिए वन कंफ्यूजन, बेसिक कंफ्यूजन जो स्पिरिचुअलिटी को क्लियर करता है, वो ये है आई एंड माई। अब आप देखिए कि सारे दिन में आप सबसे ज्यादा कौन से शब्द प्रयोग करते हैं? आई एंड माई, ठीक है। अब आप आई किसको कहते हैं? आई किसको कहते हैं? ये हैंड है, इज इट आई हैंड और माई हैंड? बोलिए। ये पूरा आर्म, आई आर्म और माई आर्म? अच्छा, माई लेग्स, माई हेड, माई बॉडी, एवरीथिंग माई, ठीक है, टोटल माई बॉडी। वेयर इज द आई, जिसके लिए हम इतना पापड़ बेल रहे हैं, चक्कर कर रहे हैं, वेयर इज दैट आई? सवाल ये है। तो जब तक आप इस बेसिक बात को से शुरू नहीं करेंगे, तो आप वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न साइंस, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी जो मर्जी कर लीजिए, पर जो भारत की ओरिजिनल सभ्यता जिसके ऊपर हमारा आधार है, उससे हम इर्द गिर्द घूम रहे हैं। इसलिए फर्स्ट फंडामेंटल क्वेश्चन इज हु एम आई। अब आप जानते हैं कि हम ह्यूमन बीइंग कहलाते हैं, ठीक है, हमारे दो कंपोनेंट हैं, एक ह्यूमन और एक बीइंग। ह्यूमन कंपोनेंट को हम अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन जो उसका बीइंग पार्ट है, जो उसका रियल लाइफ है, उसके बारे में हमें कुछ ज्यादा पता नहीं है। जैसे कोई बिजली के बल्ब को जान ले, फैन को जान ले, मिक्सर को जान ले, ग्राइंडर को जान ले, बिजली को ना जाने तो क्या होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट बात यह है कि हम दुनिया में क्या चाहते हैं। अगर हम आपसे पूछें यहां व्हाइट बोर्ड लगा के कि आप एक वर्ड में बताइए कि आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं, तो दो चार सैंपलिंग कर लेते हैं। आप में से कोई बताएं एक शब्द में कि हम अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं। जी, शांति। इधर से बताइए, सेटिस्फेक्शन। जरा उधर से, हैप्पीनेस। कोई बहन बोली है कि नहीं? अभी कोई बहन भी बोल दे, हैं? खुशी, हैप्पीनेस। ठीक है, चलो इतना ही काफी है। अब आप ये बताइए, जो कुछ आपने कहा, इन तीनों में एक कॉमन फैक्टर है। कैन यू जस्ट आइडेंटिफाई विच इज द कॉमन डिनोमिनेटर इन ऑल ऑफ दिस? अब ये बताइए कि जितनी चीजें हम जिंदगी से चाहते हैं, मेक ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ दैट। आप एक्सेलेंस चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं, केयरिंग चाहते हैं, शेयरिंग चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, ईच एंड एवरी थिंग विल बी इंटेंजिबल, नॉन फिजिकल, नॉन मटीरियल। वाई? क्योंकि ये बीइंग से बिलोंग करते हैं, सोल से बिलोंग करते हैं, विच इज ऑल्सो ए नॉन फिजिकल, नॉन मटीरियल एंटिटी, सेंशियंट कॉन्शियंट बीइंग। अच्छा, अब उसमें फिजिकल चीज तो जा ही नहीं सकती, फिजिकल का असेंस जा सकता है। मान लीजिए आपके ने लड्डू खाया, अब लड्डू तो जाएगा नहीं बीइंग में, उसका टेस्ट जाएगा, करेक्ट? इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि जो असेंशियली हम चीजें चाहते हैं वो तो फिजिकल है ही नहीं, और हम अपने आप को माई को आई मान के, दिस इज ए फिजिकल बीइंग, हम सारी चीजें इसके लिए कर रहे हैं। और पहले तो इसका लाइफ स्पैन ही लिमिटेड है, जिस नैया ने आज भी डूबना है, कल भी डूबना है, आप उसके आधार पे कहां पार करोगे। सेकेंडली, जो एसेंशियली चाहिए उसके लिए आपको किसी मेहनत की जरूरत नहीं, क्योंकि दोज थिंग्स आर ऑलरेडी इन द बीइंग। हम उसको थोड़ा सा लापरवाही से खो रहे हैं। सेंस ये है, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम और चीजों में जाने से पहले अपने बेसिक को जाने। क्योंकि अगर आपने जाना है आगरा और चंडीगढ़ की सड़क पकड़ ली, तो आप जितना भी भागोगे, जितना भी भागोगे, अपने लक्ष्य से फार्दर जाते जाओ। दैट इज द पर्पज ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस कि आईटी बहुत अच्छी चीज है, और जितना जितना इंसान कमजोर होता जाता है, उतना उतना वो आर्टिफिशियल क्रचेस को लगाता जाता है, क्योंकि उसको जो बेसिक ह्यूमैनिटी जिसके आधार पे इंसान नेचुरल जीता था, हमारे पूर्वज जो थे वो नेचुरल, उनको संकल्प ही वो आता था जो उनको कर्म करना है। आजकल हमको एक कर्म के लिए कईयों को सौ, कईयों को हजार, इतने थॉट्स आएंगे, वेस्टफुल थॉट्स, कि वो बेचारा थक जाएगा ढूंढता ढूंढता, जब वो करने को आएगा ही विल बी टायर्ड, जिसको कहते हैं टैट सिंड्रम, टायर्ड ऑल द टाइम। आप देख लीजिए, जिस व्यक्ति को होगा, अपने ऑफिस में जाएगा, सुबह जाते ही घर से नाश्ता करके आया, चाय लाओ, थका हुआ हूं, टायर्ड ऑल द टाइम, व्हाट इज दैट थिंग विच इज टायरिंग अस। इतने सारे मेस ऑफ थॉट्स में हम ढूंढते हैं कौन सी काम हमने करना है, और ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं। वैसे तो कहते हैं थिंक बिफोर यू स्पीक, लेकिन हर वक्त आदमी सोचता रहे क्या बोलना है, तो नेचर होना चाहिए ना। तो ऑल दीज थिंग्स यू विल लर्न हियर, एंड दैट विल स्टैंड वेरी फर्मली विद यू इन टाइम्स ऑफ नीड। खास चीज वो होती है कि जब आपको जरूरत हो ना, उस वक्त काम आए। इज इट पॉसिबल टू एयर कंडीशन और टू इंसुलेट योर माइंड इन सच ए वे कि जो चीज आपको चाहिए वो तो अंदर जाए, और जो अनवांटेड अनवेलकम है अनहेल्दी है वो ना जाए। तो ये आर्ट यहाँ आपको सिखाया जाए। ओम शांति।
थैंक यू वेरी मच भाई साहब। और अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगी सिस्टर तृप्ति को हु इज द वाइस प्रेसिडेंट एट बार्कलेस बैंक एंड इज विद अस ऑल द वे फ्रॉम पुणे। शी इज ऑल्सो बीन प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअलिटी फॉर सेवरल इयर्स। सो वेरी ब्रीफली सिस्टर तृप्ति विल शेयर हर ओन पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऑफ हाउ स्पिरिचुअलिटी हैज हेल्प्ड हर एंड हैज बीन यूजफुल।
आई बिलीव मेनी ऑफ अस are from IT organization and hence we appreciate the pace at which technology is changing, the demanding situations, the challenging deadlines. Earlier I used to get confused. I was not too sure of how do I manage these situations, how do I cope up with the challenging demand. And then one day, I got introduced to Brahma Kumaris. That's when I rediscovered my own self. I got introduced to my inner strength, my inner potential. And like we saw a while ago, we've got immense potential. We also talked about we can take charge of our destiny. That's where I started on this journey and I started moving ahead also in my career. The situations that used to appear as threat to me earlier, why? Because there was weakness inside. Now that I discovered my inner strength, the same situations started to appear as opportunities and not as threat. And that's where I started using my inner potential, the strength in our day-to-day lives, making our lives more meaningful for my own self and for others as well. And that's where we as an organization, now we've partnered with Brahma Kumaris and our employees are also being immensely benefited by this knowledge. And hence, my urge, my sincere request to each one of you, please do make use of this opportunity. Do make use of every single moment that we are around here for 3 days, not just for these 3 days, but also when we go back, let's please be in touch with this knowledge. It's like khazana tayar hai. It's for us to go and grab it. So please, my sincere request, do make use of it and all the best to you. And my sincere thanks to Didi ji and all of you for providing me an opportunity to talk to you all. Thank you.